जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस प्रेमा गोपाचार्य अष्टोत्तर्ष दिव्यांग सवय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रेमराजक आचार्य अष्टोत्तर्षद दिव्यांग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तरंदी जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ प्री धाम की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की समवेद गौरभक्तवृंद की निताई गौर प्रेमानंदे All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे स्कंद 4 अध्याय 27 श्लोक क्रमांक 15। ते चंड वेग अनुचराहा पुरंजन पुरम यदा हर्तुमारेभिरे तत्र प्रत्यषेधत् प्रजागरः ते चंड वेग अनुचराः पुरंजन पुरम यदा हर्तुमारेभिरे तत्र प्रत्यषेधत् प्रजागरः ते चंड वेग अनुचराः पुरंजन पुरम यदा हर्तुमारेभिरे तत्र प्रत्यषेधत् प्रजागरः। ते चंड वेग अनुचराः पुरंजन पुरम यदा हर्तुमारेभिरे तत्र प्रत्यषेधत् प्रजागरः ते चंड वेग अनुचराः पुरंजन पुरम यदा हर्तुमारेभिरे तत्र प्रत्यषेधत् प्रजागरः ते चंड वेगानुचराः पुरंजन पुरम यदा हर्तुमारेभिरे तत्र प्रत्यषेधत् प्रजागरः। शब्दार्थ भाषांतर तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ते वे सब चंड वेग के अनुचराहा सेवक पुरंजन राजा पुरंजन की पुरम पुरी शहर को यदा जब हर्तुम लूटना आरे भीरे प्रारंभ किया तत्र वहाँ प्रत्यषेधत् रक्षा किया प्रजागरह बड़े सर्पने। भाष्यांतर जब राजा गंधर्वराज चंडवेग तथा उसके सेवक पुरंजन की नगरी को लूटने लगे तो 5 फनों वाले एक सर्पने नगरी की रखवाली करनी शुरू कर दी। तात्पर्य जब मनुष्य सोता है तो विभिन्न सपनों में प्राण सक्रिय रहता है। सर्प के 5 फन सूचित करते हैं कि 5 प्रकार की वायुओं से घिरा है प्राण अपान व्यान उदान तथा समान। जब शरीर निष्क्रिय होता है तो प्राण सक्रिय रहता है। 50 वर्ष की आयु तक मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रियाशील रहता है किंतु इसके बाद शक्ति घटने लगती है। यद्यपि अधिक बल लगाकर वह 2 या 3 वर्ष और अधिक से अधिक 55 वर्ष तक कार्य कर सकता है। इसीलिए सरकारी नियमों में अवकाश प्राप्त करने की आयु 55 वर्ष की है। 50 वर्ष के बाद शक्ति जिस प्रकार क्षीण होती है उसे अलंकारिक रूप से यहाँ पर 5 फन वाले सर्प के रूप में दिखाया गया है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेयं श्री गुरुहो श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद्भागवत कक्षा में। तो मैं शुरुआत में आप सभी से आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि आज जो इस विषय पर चर्चा होंगी, ये जो श्लोक के ऊपर, तो परंपरा के अनुसार और शास्त्र के अनुसार हो। तो आज हम पढ़ रहे स्कंद 4 अध्याय 27, राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा, और आज श्लोक क्रमांक 15 पढ़ रहे हैं। तो हम पिछले कुछ समय से राजा पुरंजन उपाख्यान सुन रहे हैं। ये बहुत ही विलक्षण कथा है ना। अब ये नारद मुनि जो है राजा प्राचीन बरही को बता रहे। अभी इसमें बहुत ही कथा थोड़ी सी विलक्षण हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में हम राजा पुरंजन के बारे में सुनते हैं, जो क्या करते हैं कि अकेले रहते हैं, फिर उनके जीवन में एक स्त्री आ जाती है, फिर वो आखेट के लिए जाते हैं, मतलब शिकार के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद वापस आ गए तो वापस अपनी पत्नी के साथ मिलन हो जाता है। तो अभी जीवन शांतमय होना चाहिए था, है ना। लेकिन यही तो मनोरंजक, अभी देखेंगे सामान्यतः जो मनुष्य है उसको मनोरंजक कथाएं अच्छी लगती है, थोड़ा मनोरंजन हो, है ना, बोलते ना। जैसे हम पहले जब सुनते थे तो बोलते थे कहानी में ट्विस्ट आ जाता है कि एकदम से सब ठीक चल रहा है लेकिन एकदम से एक एंट्री हो जाता है, है ना। तो जिस तरह से एक खलनायक आ जाता है जीवन में, है ना, तो यहाँ पे भी एक खलनायक की तरह एक व्यक्ति आ गए हैं। वो कौन है? चंडवेग। चंडवेग मतलब यहाँ पे उनकी तुलना की गई है समय, समय जो अभी अपना प्रभाव दिखाना चालू कर देगा। और बाद में ये चंडवेग मतलब गंधर्व राज की उपमा दी गई है। गंधर्व मतलब एक राजा है जो अपने सेना के साथ आते हैं ना, 360 जो पिछले वाले श्लोक में देख रहे थे। तो ये मतलब क्या है? दिन और रात है जो क्या कर रहे हैं, मनुष्य का जीवन हरण कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि ये 50 साल के बाद ही वो चंडवेग आ जाता है, जैसे ही जन्म हो जाता है उसके साथ ही चंडवेग का आक्रमण चालू है। लेकिन उसका जो अनुभव है वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, या फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ही बोलते हैं अपने तात्पर्य में कि 50 साल के बाद उसका अनुभव करना थोड़ा व्यक्ति चालू हो जाता है। तो इसी के लिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में बोला है 50 साल का जो महत्व बताया। तो बाद में सिर्फ अभी ऐसा ही नहीं कि सिर्फ चंडवेग आने वाले है, चंडवेग के बाद अभी उसके बाद कालकन्या आने वाली है। कालकन्या के बाद मतलब वो सारे अपने यवन सैनिक को लेकर आने वाली है,
उसके साथ भय आने वाला है, प्रज्वर आने वाले हैं, तो ये पूरा आक्रमण चालू होने वाला है शरीर के ऊपर। तो बाद आने वाले सारे सत्रों में हम सुनने ही वाले हैं। तो ये एक कथा है जो अलग अलग इसमें से जा रहा है कि एक पुरंजन करके राजा है, उसके जीवन में कुछ तो हो रहा है ना। तो सामान्यतः प्रचार हेतु अगर व्यक्ति को डायरेक्टली बोला गया कि नहीं आपके जीवन में समस्या है, ये समस्या है इसी है, तो व्यक्ति कभी कभी क्या नहीं करता, उसको ज़्यादातर से प्रोत्साहित नहीं होता है। वो बोलता है नहीं हमारे जीवन में ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो इसी के लिए जो नारद मुनि ये जो कथा बता रहे ये किस तरह से बता रहे, उपमा देकर है ना, परोक्ष मतलब डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं, इनडायरेक्टली बता रहे कि आपके जीवन मतलब आपका जीवन है। लेकिन अभी देख सकते हैं कि ये इतना तरह से समझना आसान नहीं है, है ना, है ना। राजा प्राचीन पर ही अभी देखिए वो इतने मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन ये बुद्धिमान व्यक्ति है उनके सामने एक कथा चल रहा है, तो ये पुरंजन की कथा है, ये है वैसे है। लेकिन कभी कभी उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि वो सच में किसके लिए है ना। जिस तरह से ये आने वाले एक अध्याय है जो 29 नंबर का अध्याय, तो उस 29 अध्याय में शुरुआत में ही प्राचीन भरी बोलते हैं, जो नारद तथा राजा प्राचीन भरी के मध्य वार्ता है, तो बोलते हैं कि राजा प्राचीन भरी ने उत्तर दिया, हे प्रभु आपके कहे गए राजा पुरंजन रूप आख्यान का सारांश पूर्ण रूप से नहीं समझ सके। देखिए प्राचीन भरी स्वयं बता रहे कि मैं पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहा हूं ये पुरंजन का उपाख्यान क्या है। वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है वे तो समझ सकते हैं, किंतु हम जैसे सकाम कर्मों में अत्याधिक लिप्त पुरुषों के लिए आपके आख्यान का तात्पर्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। अब ये कौन बता रहे, स्वयं राजा प्राचीन भरी बता रहे कि जो सकाम कर्मों में लगे हैं वो हमारे लिए या फिर जो संसार में लगे हुए हैं उनके लिए लिप्त पुरुषों के लिए ये आख्यान समझना मुश्किल है। अब ये अगर राजा प्राचीन भरी बोल सकते हैं तो हमारे जैसे इस कलियुग की जीवात्मा के क्या है ना, जो सकाम कर्मों भी लगा है कि नहीं वो भी पता नहीं है ना, कौन से कर्मों में लगे हुए। तो ये बहुत थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन मतलब बहुत समझना मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से कौन है ये, क्या कर रहे हैं, कौन है ये चंडवे, कहाँ से कहाँ क्यों आते हैं पूरी में। तो इसी के लिए वापस नारद मुनि को समझाते ये जो 29 अध्याय में वापस समझाते कि मैंने जो जो बताया था ये कौन है, ये जो अननोन मित्र है वो कौन है, स्वयं भगवान है या फिर ये जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं। मतलब अभी भी नारद मुनि बता नहीं रहे कि ये तुम्हारे लिए है, पहले बता रहे कि मनुष्य के लिए। तो ये मनुष्य किस तरह से है ना, जो उसके बुद्धि कलुषित हो चुकी है, जिसके द्वारा वो फंस जाता है और फिर उसके द्वारा जीवन में सुख दुख का अनुभव करता है और फिर इस शरीर में रहकर भोग करने का प्रयास करता है और भोग करते वक्त कौन सी समस्या आ जाती है, ये जो सारी चर्चा है ये वापस नारद मुनि बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत प्राचीन भरी को समझना चालू हो जाता है, अरे ये तो मेरे लिए ही है ना। देखिए किस तरह से अभी नारद मुनि वापस इस अध्याय में इस एनालॉजी को वापस बताते कि किस तरह से चैरियट एक रथ का उदाहरण दिया है कि एक रथ है, रथ के पहिए, रथ के जो घोड़े हैं, रथ में कौन बैठा है, ये सब मतलब जो हमने उपमा सुनी होगी उसके। तो इस यहाँ पे बताते हैं कि जो मन है वो लगाम की जैसा है, लेकिन इन इंद्रियों को जो जोड़ने वाला बंध है उसको प्राणवायु बोला है। तो वापस ये जो नारद मुनि है ये समझा रहे हैं और ये पूरी तरह से समझे इसी के लिए प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में पूरी तरह से उसका क्या करे बारे में बता रहे। प्रभुपाद ने भी भागवतम के जो 28वां अध्याय है ये 34 स्कंद का जो 65 नंबर का श्लोक है अंत में है, तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने पूरी तरह से अपेंडिक्स दिया है। अपेंडिक्स मतलब उस शब्दों का अर्थ दिया है ना। अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये अलग अलग शब्दों का क्या अर्थ है, शुरुआत से बताते हैं। तो हमारे जो सारे आचार्य हैं, उनको पता है कि कलयुग में क्या होने वाला है। प्रायण अल्पायुष सभ्य कला वस्मिनि गजना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्याय उपद्रत। तो ये मंद और सुमंद मति वाले लोगों के लिए क्या करना चाहिए, तो इसी के लिए वापस वापस उसको रिपीट किया जा रहा है ना। अभी यहाँ पे जो शुरुआत में हम देखते हैं आज के श्लोक में, कि किस तरह से जो प्राण के बारे में बताया है, ये प्राण क्या है ना, एक सांप का उदाहरण बताया है ना, वो भी क्या बोला है, पांच फन वाला सांप है। तो नारद मुनि इसको क्यों बता रहे हैं, सांप का उदाहरण इसके लिए दिया है कि इसके पहले भी प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बोलते हैं जो कि सांप क्या है, सिर्फ हवा पीकर रहता है। किस तरह से, अगर उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा लेकिन सिर्फ हवा पीकर भी क्या कर सकता है, रह सकता है। तो इसी के लिए ये प्राण को पहले उपमा दी गई है सांप की। अभी ये सांप पांच फन वाला क्यों है, 25 फन वाला नहीं है, 30 फन वाला नहीं है, पांच पांच फन वाला ये सांप क्यों है, है ना। तो कभी कभी प्राण का उदाहरण सुनते हैं तो हमने अभी तक कवि लोग जो बोलते हैं कि प्राण का कैसे, जैसे एक पक्षी की तरह उदाहरण दिया है, पक्षी या फिर मतलब बोलते ना प्राण फकीर उड़ जाएंगे, मतलब प्राण उड़ जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं आचार्य क्या बताते हैं, ये प्राण सांप की तरह तुलना की गई। तो ये सांप के पांच फन है, तो क्या पांच फन है, पांच प्राण, पंचवायु। जिस तरह से ये आत्मा भी जब शरीर को छोड़ता है ना, तो उसके बाद प्राण भी शरीर छोड़, मतलब प्राण को भी निकलना पड़ता है। तो ये जो प्राण है तो उस वक्त वो भी सांप की तरह रेंगता है, उधर लिखा है सांप की तरह, मतलब कुंडलिनी चक्र बनाता है। तो ये विशेष करके प्राण को जो उपमा दी गई वो किसकी तरह दी है, सांप की तरह दी गई। अभी मुंडक उपनिषद में प्रभुपाद जी एक भगवद गीता में जो दूसरा अध्याय 17 श्लोक में उसके तात्पर्य मुंडक उपनिषद का एक श्लोक बताते हैं, एषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश, प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धि विभवत्येष आत्मा। तो बताते हैं उसमें इस मुंडक उपनिषद के 3.1.9 नाम के श्लोक में कि आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अनुआत्मा पांच प्रकार के प्राणों में तैर रहा है, प्राण अपान व्यान समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को पांच वायु के कलमश से शुद्ध किया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो यह पांच प्राण के बारे में इस मुंडक उपनिषद के श्लोक में बताया। तो वैसे तो देखा जाए तो 10 तरह के प्राण हैं, जो श्रीमद् भागवतम में 6 अध्याय में 9 नंबर के श्लोक में प्रभुपाद बताते तात्पर्य में, क्योंकि उस श्लोक के इसमें बताया कि 10 तरह के वायु है। तो ये 10 तरह के कौन कौन से वायु है, तो प्राण अपान उदान व्यान समान, ये महत्वपूर्ण है। और उसके साथ भी और उससे भी सूक्ष्म और पांच है वायु, वह नाग कूर्म क्रकर देवदत्त और धनंजय। तो उसमें से ये प्राण वायु क्या करता है, ये क्या है, ये जो हम नाक से जो लेने वाले जो वायु है वो प्राण है। अपान, अपान मतलब जो नीचे के ऐसे डाउनवर्ड्स, मतलब निचले स्तर में जो हवा बहती वायु बहता है वो अपान, मतलब जो रेक्टम, मतलब शरीर से जब हवा नीचे की साइड से नीचे के वायु से जाती है बाहर, तो उसको अपान वायु बोला है। उदान, उदान मतलब जो गले से ऐसे घूमता है और जो हमें कभी कभी श्वास रुक जाता है या गुदमरने मतलब उसको बोलते हैं, तो वो जो वायु है वो उदान है। व्यान मतलब जो पूरे शरीर में वायु घूम रहा है उसको व्यान बोला है। और समान मतलब वो वायु जो जो हम खाना खा रहे उसको क्या करते हैं, पचन करने के लिए जो वायु उपयोग में आता है वो समान वायु है। कभी कभी डकार आ जाता है ना, तो जो होता है वो समान वायु। फिर उसके साथ ही कुछ सूक्ष्म हवाएं वायु है, वो है नाग। नाग मतलब जो आँखों का या फिर मुंह का जो खुलना है बंद होना है, जो खुलना है उसको नाग बोलते हैं। कुर्म, कुर्म मतलब पता है कि जो इसके जैसा टॉर्टोइस बोलते हैं कुर्म, वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन के लिए मदद करता है। क्रकर, क्रकर मतलब जो क्या करता है भूख बढ़ाता है। ये देवदत्त नाम का वायु क्या करता है, जो कभी कभी मुंह कभी ज्यादा खुल जाता है एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, जिस तरह से यॉनिंग करते हैं मतलब उस वक्त। और धनंजय, धनंजय मतलब जीवन आधार वायु है, वो क्या है सस्टेनेंस, इस तरह के वायु है। तो ये इतने सारे 10 वायु में भी लेकिन महत्वपूर्ण 5 वायु, इसी के लिए 5 जो वायु है उनको क्या बोला है पंच प्राण। और ये प्राण क्या करते हैं, जो पूरे इंद्रियों से कनेक्टेड है वो क्या करते हैं उनसे द्वारा ही कार्य करवाते हैं, है ना। तो यहां पे ये जो प्राण है लेकिन ये नहीं समझना चाहिए वो क्या है स्वतंत्र है। जो जब कृष्ण मिलते हैं है ना वसुदेव जी से, मतलब जो वासुदेव जी है वो वसुदेव को मिल रहे हैं और उसके बाद उनको उपदेश कर रहे हैं। जो दशम स्कंद में 85 नंबर का जो अध्याय है उसमें बताते हैं कि क्या बताते हैं कि प्राणादिनाम विश्वस्थाम शक्तयो माँ परस्त्रयाता पारतंत्र्या, मतलब वो क्या है पारतंत्र है। प्राण क्या है, ये एक जो है जो हमें हवा देखती है, उस हवा हवा जैसा नहीं है वो वायु, मतलब वो ऐसा नहीं कि बाहर जो हवा घूम रही है जिसका हम स्पर्श कर अनुभव कर सकते हैं, वो हवा नहीं है। प्राण उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है और ये जो इतना सूक्ष्म है लेकिन ये सिर्फ प्राण ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये प्राण क्या है, ये कब तक वो उसके लिए जरूरत पड़ता है किसका, परमात्मा का, परमात्मा मतलब आत्मा और परमात्मा इसके ऊपर ही एक्चुअली प्राण क्या रहता है उसको डिपेंड्स रहता है उसके ऊपर, वो उसको समझना है। तो अब ये प्राण क्यों बहुत जरूरत है, क्योंकि मध्वाचार्य जी बताते 11वें स्कंद में मतलब एक 11वें स्कंद में जो दूसरा अध्याय है निमि महाराज और नवयुगेंद्र इनके बीच में चर्चा चल रही है, तो वहां पे तात्पर्य में लिखा है कि मध्वाचार्य बता रहे कि प्राण के साथ अगर व्यक्ति क्या कर रहा है स्वयं को पहचान रहा है तो वो क्या हो सकता है भूख से तड़प सकता है, मतलब ही सफर्स फ्रॉम हंगर। अगर वो स्वयं को मन के साथ, है ना कि व्यक्ति क्या कर रहा है सब स्वयं को मन के साथ मन के स्तर पे समझ रहा है तो उसको क्या हो जाता है भय पैदा होता है, उसको कष्ट पैदा होता है पैनिक, और उससे वो क्या होता है निराशा बन जाता है। अगर कोई एक आसुरी व्यक्ति बुद्धि के स्तर पे स्वयं को समझता है तो उसमें लिखा है कि प्रोफाउंड एग्जिस्टेंशियल बिटरनेस एंड फ्रस्ट्रेशन, मतलब उसके जीवन में एक जो कटुता आ जाता है जो उसके जीवन के बाहर वाले स्तर को जीवन को देखकर, मतलब बुद्धि के स्तर पे चल रहा है उसे, और कोई अहंकार के स्तर पे रहता है तो सिर्फ मैं और मेरा इसके बारे में सोचता रहता है, और अगर कोई चेतना के ऊपर स्वयं को अनुभव करता है तो क्या होता है वो हंटेड बाय मेमोरीज ऑफ पास्ट, मतलब वो पिछले वाले जो सारे यादें हैं उसके ऊपर क्या हो जाता है भयभीत हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर इन सब अलग अलग स्तरों पे क्या करता है लेकिन जो प्राण के स्तर पे वो स्वयं को समझता है तो क्या करता है भूख मतलब हंगर जो क्या होता है इंद्रियों के स्तर पे स्वयं को समझ सकता है। तो ये सब प्राण और ये सब पढ़ने के बाद समझने के बाद सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत ही क्या चल रहा है कि क्या है इतना कुछ टेक्निकल है, लेकिन अगर हम समझ लेंगे कि हमारे शरीर में ये जो प्राण है ये कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कितना सूक्ष्म रूप से, तो इसी के लिए स्वयं कृष्ण ही बताते उद्धव जी को कि जो व्यक्ति को क्या करना चाहिए दिन में 3 बार जो 3 संध्या रहती है उस वक्त क्या करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए 10 बार कम से कम। अगर वो प्राणों को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे, तो वहां पे कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति क्या कर पाएगा, अपने जो जीवन को क्या कर सकता है, स्थिर कर सकता है ना। इसके लिए प्राणायाम बोला गया है। आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग डायरेक्ट प्राणायाम पे चले जाते हैं। प्राणायाम इस सूक्ष्म स्तर का क्या है, नियंत्रण करने की स्थिति है शरीर को। पहले उसके लिए पहले योगासन करना चाहिए, कुछ पथ्य, कुछ क्या किस तरह का खाना है, किस तरह का ये करना है, उसके बारे में व्यक्ति क्या नहीं करता, ज्यादा सोचता नहीं, डायरेक्ट प्राणायाम पे जाते हैं। तो ऐसे तो प्राणायाम का उसका उपयोग है, लेकिन प्राणायाम का महत्वपूर्ण क्या है, किसके लिए है, तो प्राणों को सब, ये जो प्राण है, ये जो हवा वायु है शरीर में, उसको क्या करना है, इक्विलिब्रियम, मतलब उसको एक तरह से उसको जो बैलेंस्ड ऐसे, हाँ समतोल ऐसा। तो ये जब होगा तो क्या हो सकता है, जो मन है वो शांत रह सकता है और बाकी के जो कार्य है उसमें वो क्या कर सकता है, ध्यानपूर्वक वो कार्यों को कर सकता है। अभी ये जो पंच प्राण है ना, ये शरीर में है लेकिन इसका कभी ज्यादा हम अनुभव नहीं करते, लेकिन ये जो प्राण के बारे में व्यक्ति कब सोचना चालू कर देता है, जब व्यक्ति का अंत समय आ जाता है ना। जिस तरह से मुकुंदमाला स्तोत्र के एक श्लोक में लिखा है कि घर घर करके आवाज आने लगता है, उसको तो प्राण का अनुभव करना चालू करता है। अरे सब लोग तो चर्चा करते हैं, अरे इसका अभी प्राण निकलने वाले है ना। लेकिन ये प्राण क्या सिर्फ अंत समय में ही एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा है क्या? नहीं, वो पूरे जीवन भर है, लेकिन उसका जो स्ट्रगल है, उसका जो है ना कष्टमय स्थिति कब चालू होता है, अंत समय में। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे इस श्लोक में कि चंड वेग है, जो अभी 50 साल की उम्र के बाद जिसको अनुभव करना चालू करते हैं लोग। लेकिन अभी इस जीवन में ऐसा हो चुका है कि व्यक्ति मतलब वो 50 साल के बाद भी उसका अनुभव करना रुक जाता है, क्योंकि वो इतना कष्ट कितने काम में लगा हुआ है। तात्पर्य बताए प्रभुपाद की 55 साल की उम्र में तो व्यक्ति में रुकना रुक जाना चाहिए, है ना। तो अभी तो जो रिटायरमेंट का जो एज है अभी कितना, 58 है, 60, तो मतलब प्रभुपाद ने जब बताया तो उस वक्त 55 था, अभी 60 कर दिया। मतलब लोगों को बोला जाए कि और थोड़ा काम करो, काम करो, आपका प्राण काम कर सकता है, लेकिन पता नहीं वो कब तक काम करेगा। अभी इसी के लिए तो एकदम से बंद पड़ जाते हैं, लोग बोलते एकदम से प्राण कैसे निकल गए, है ना। लेकिन व्यक्ति को समझ आना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जन्म में मतलब मनुष्य शरीर में आ चुका है, तो उसको सिर्फ इतना काम नहीं करना चाहिए कि उसको समझना है कि जीवन में क्या चल रहा है। तो इसके लिए राजा ऋषभ देव जी बता रहे हैं ना, जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है प्रभुपाद जो बहुत बार 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 बताते हैं, 5वें स्कंद में है, 5वां अध्याय में पहला श्लोक, नायम देहो देह भाजान नरलके कष्टान कामान अर्हति विट भुजान। तो ये बताते पहले इस श्लोक में शुरुआत में बताते कि नायम देहो देह भाजान, ये मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं बना है कि इतना आप कष्ट करो और ऐसी चीज पाने के लिए करो जो किसके लिए मिल सकता है, विट भुजान, मतलब जो क्या कर सकते हैं, जो विष्ठा खाने वाले प्राणी है, कुकर और सुकर, मतलब कुत्ता और जो सुअर है, उनको भी जो ये मिलता है वो भोग पाने के लिए इतना कष्ट मत कीजिए, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्राण है वो हम किस में लगा रहे हैं, हम इतना कष्ट करने में लगा रहे हैं कि जो ऐसे भोग पाने के लिए जो विष्ठा खाने वाले प्राणियों को मिल सकता है, जो सामान्य है, इतना कुछ इतना कठिन नहीं मिलने के लिए, लेकिन फिर भी जो है मनुष्य क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। भगवद गीता में 7वें अध्याय में बोलते हैं 13वें श्लोक में, त्रिभीर गुणमयी भावेर एवं सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानते मामेभ्य परम अव्ययम, कि किस तरह से जीवात्मा जो क्या है इस माया के द्वारा क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है, त्रिभीर गुणमयी, और ऐसे कैसे 3 गुणों से आच्छादित ये हो जाता है, और ऐसे माया से मोहित होकर व्यक्ति क्या करता है, खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए, फिर शरीर से संबंधित उस परिवार के लिए, या फिर वो उसकी सोसाइटी, उसके समाज के लिए, उसके गांव के लिए, शहर के लिए, देश के लिए, है ना। वो बोलता है कि क्या है, ये सब मैं करवा रहा हूँ। इस तरह से माया से मोहित होकर वो क्या कर रहा है, इतना कष्ट में लगे रहता है ना, वो रुकना ही नहीं चाहता है। और फिर इतने ही नहीं, फिर आगे कृष्ण ये बता रहे, लेकिन इस माया से आप परे हो सकते हैं। देवी वेश गुणमय मम माया दुरतया माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे। तो किसी को बाहर निकलना है तो बस बहुत आसान है, भगवान की शरण जाना है। लेकिन भगवान अभी बताएंगे कि कौन से व्यक्ति शरण नहीं आते है ना। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। तो उस श्लोक में बता रहे कि चार तरह के व्यक्ति नहीं आते। तो उनकी शुरुआत होती है मूढ़ा। तो मूढ़ा में प्रोपा जी तात्व में बताते हैं कि किसकी तरह है, गधे की तरह है। गधा क्या कर रहा है, उसको सिर्फ वो एक जो घास खाकर, थोड़ा सा घास चाहिए उसके लिए और कुछ नहीं, वो घास उसको इधर उधर कहाँ मिल सकता है। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं बहुत कष्ट नहीं करूंगा तो मुझे घास नहीं मिलेगा, है ना। तो इसी तरह से इतना कष्ट करता है और इतना मार खाता रहता है। और प्रभुपाद बताते कि गधी ने किसी क्या करता है, लात भी खाता है ना। तो मैथुन जीवन के लिए वो बस इतना कष्ट में है कि वो दिन रात उस कष्ट का अनुभव करता है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो ये एक व्यक्ति में जो प्राण है ना, वो उसके किस काम में लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर वो सिर्फ भोग के लिए लगा रहा है तो जिस तरह से वो क्या हो जाता है, उसका जो अगला शरीर जो प्राप्त करेगा वो किस तरह करेगा, प्राणियों का जीवन ही प्राप्त करेगा या फिर निचले स्तर का जीवन प्राप्त कर सकता है ना। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगा रह रहे वो क्या करते हैं, प्राणों को अपने ऊपर उठाते और वो क्या करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं, है ना। तो कृष्ण बताते भगवद्गीता में कि प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कि प्रयाण काले मनसा चलेन, मतलब प्रयाण काल जब हम कोई व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है तो कोई स्थिर मन से भक्त्या युक्तो, मतलब भक्ति से, और योग बलेन मतलब योग बल के साथ वो क्या कर रहा है, अपने दो भ्रुकुटी के बीच में प्राण को क्या कर रहा है, एकत्रित करके जब शरीर छोड़ रहा है तो क्या कर सकता है वो, तो वो भगवान को निश्चित ही क्या करेगा, प्राप्त करेगा। भगवान बोलते हैं कि वो मुझे प्राप्त करेगा। तो कृष्ण भी बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे कि प्राणों का कितना महत्व है ना, कि प्राण को किस तरह से क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। और ये हम उदाहरण बता दें, जैसे भीष्म देव के जीवन में, भीष्म महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ऐसे नहीं शरीर छोड़ा है ना, उस उन्होंने क्या किया, प्राणों को एकत्रित किया और है ना शरीर में ऐसे ऊपर ऊपर उठा के, फिर उस तरह से ध्रुव महाराज जब उनको लेने के लिए विष्णुदूत आए थे है ना, तो ऐसे नहीं, उस वक्त भी लिखा है कि उस तात्पर्य भाषांतर में कि ध्रुव महाराज ने भी क्या किया था, प्राणों को नियंत्रित किया हुआ था। या फिर पृथु महाराज ने भी, उन्होंने अपने प्राणों को नियंत्रित करके उन्होंने शरीर को त्याग किया था। तो ये प्राणों को नियंत्रित करके शरीर छोड़ना है ना। इतना अभी ये सब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है सुनने कि प्राण तो पहले है क्या, समझ नहीं आ रहा है, और उसमें से करेंगे क्या, है ना। तो इसी के लिए प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं एक श्लोक के कि हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 है ना गतिरन्य था। तो इस कलयुग में करेंगे क्या, इस कलयुग में कोई कहाँ कहाँ पे क्या क्या नियंत्रित करेंगे, लेकिन जो हरि नाम है, भगवान का नाम है ना, हरेर नाम केवलम, ये हरि का जो नाम है वो क्या करेगा हमारे लिए, यही एक बचाव करेगा, है ना। अभी ये कैसे होता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही क्या किया है, अपनी जो सारी शक्तियां है उस हरि नाम में डाला हुआ है ना। जो चैतन्य शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में हम गाते हैं कि सारी जो शक्तियां है वो क्या है, इस हरि नाम में है। तो हमें क्या करना है, उस प्राण को उसको किसके किसके उपयोग में लाना है, भगवान के नाम में और भगवान की सेवा में लगाना है। अगर हम उसको नहीं लगाएंगे है ना, तो फिर बाकी के जीवात्मा के जैसा क्या करेगा, प्राण छोड़ना पड़ेगा। जिसको अंततगत्व क्या हो जाता है, निचले स्तर का योनि प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब ये प्राण के बारे में देखेंगे तो भगवान भी क्या करते हैं, जो अलग अलग असुर आते हैं है ना, तो भी क्या करते हैं, उनका प्राण खींच लेते है ना। जिस तरह से बहुत प्रसिद्ध उदाहरण किन का है, शिशुपाल पूतना जी का। पूतना स्वयं आए थे है ना भगवान को, मतलब भगवान को मारने के लिए आए थे, तो भगवान ने भी उनका भक्ति को बोले अरे ये क्या कर रहे हैं, लेकिन सेवा करने की इच्छा है, लेकिन करना क्या है, मुझे ही नष्ट करना है। तो भगवान ने आंखें बंद कर लिया, देखना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने इतने सारे बाकी सारे बालकों की भी हत्या किया था, वो देखना नहीं चाहते थे। लेकिन जब वो सेवा को एक्सेप्ट भी कर रहे थे, ले रहे थे, तो पूतना जी ने उनको दूध पिला रहे थे, तो पूतना वो दूध पीते पीते भगवान ने क्या किया, उनके प्राण खींच लिए। तो जब प्राण बाहर जा रहे थे है ना, तो पूतना जिसने क्या किया था, शरीर का रूप बदल कर आई थी। अभी शरीर का जो रूप बदलना है तो उसके लिए वो बहुत, उसके लिए भी नियंत्रण की जरूरत रहता है। लेकिन जैसे भगवान प्राण खींच रहे तो वो सारा नियंत्रण निकल गया पूतना का, वो इस तरह से हो गया कि उसने अपना पूर्वत, अपना जो वास्तविक रूप धारण किया, 12 माइल इतना बड़ा उसका रूप था, उतना रूप धारण करके भाग रहे और बोल रहे मुंच मुंच, मतलब ये बालक मुझे छोड़ो छोड़ो। तो हम समझ सकते हैं कि प्राण जब निकल रहे है ना, कितना व्यक्ति मतलब चिल्लाता है ना। तो यहाँ पे लेकिन भगवान ने उनके को कृपा किया कि उनको क्या किया, अच्छा गति दे दिया। अगासुर का भी ऐसे ही हुआ था। अगासुर ने जब सारे गोप बालकों को अंदर है ना पेट में लिया था, तो फिर भगवान ने भी अंदर उनका प्रवेश किया था अगासुर के इसमें, तो अगासुर को लगा कि अभी सब समाप्त हो गए। लेकिन भगवान ने क्या किया, अंदर अपना रूप बहुत बड़ा धारण किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वापस जो अगासुर का प्राण था वो क्या हो गया था, चोकअप हो गया था, पूरा अटक गया था, और ये इस तरह से उसकी आंखें पूरा बाहर निकल कर आ गई, और उसका जो प्राण था वो सर फोड़ कर एकदम फट करके निकल गया। और तो प्राण निकलना ये कुछ एकदम आनंददायक चीज नहीं होता है, लेकिन भगवान के जो भक्त रहते हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो भगवान के नाम में लगे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके भी प्राण निकलते हैं, लेकिन क्या है, वो जब हरि नाम में लगे रहते हैं तो क्या हो जाता है, या फिर उन्होंने भगवान की सेवा में लगे हैं इसी के लिए भगवान की कृपा रहता है, हाँ उस वक्त भगवान का नाम नहीं निकलेगा। देखिए अगर अंत समय में, बाद में हम पढ़ने वाले कि जब वो कालकन्या या फिर प्रज्वर, वृद्धावस्था और 107 डिग्री का जब फीवर आएगा, तो प्राण मतलब अंदर जलता है सांप की तरह, वो निकल नहीं सकता इस दावाग्नि से, तड़पता है, तो होगा क्या। तो उस वक्त बोलते घर घर आवाज आता है और शरीर से आवाज नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसी के लिए समझना है कि भगवान ने क्या बोला है, अंत काले जे मामे व स्मरण मुक्तवा कलेवरम, क्या करना है, स्मरण करने के लिए बोला है, और स्मरण करना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, श्रवण और कीर्तन करना पड़ेगा। जब श्रवण और कीर्तन पूरी तरह से अच्छे तरह से होगा तो क्या होता है, स्मरण हो जाता है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि बीच में कुछ भक्त जो थे उनका एक एक्सीडेंट में शरीर छोड़ा था, तो एक बहुत प्रश्न किया था कि भक्तों के साथ ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी उनको शरीर छोड़ना पड़ता है, उनके प्राण निकल जाते हैं, तो उनके आजू बाजू कोई भक्त रहेगा पता नहीं, आजू बाजू हरिनाम हो रहा है पता नहीं, लेकिन बता रहे थे कि कभी कभी कोई एक व्यक्ति रहता है जो थोड़ा बहुत भगवान की सेवा में अब भी जस्ट चालू हो गया है, भक्ति इतना भी नहीं कर रहा है, वेल विशर टाइप है और चल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है उसके अंत समय में भी क्या हो जाते हैं, भक्त जाते हैं हरिनाम कीर्तन करते हैं, तो ऐसा कैसा कुछ, मतलब भक्त अगर उसका जो स्थिति ऐसा हो जाता है कि शरीर छोड़ रहे तो आजू बाजू कोई हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति हो सकता है जिसने इतना भी भक्ति किया ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन वो जब शरीर छोड़ रहा है तो भक्त आजू बाजू है, तो ऐसे कैसे, तो फिर कैसे समझे इसको। तो उस उत्तर में बहुत अच्छा ये दिया था कि देखिए कि जो अंत समय में कोई व्यक्ति श्रवण या कीर्तन नहीं कर सकता है, आप कितना भी आजू बाजू श्रवण कीर्तन कर रहे, कान के पास आके कोई बोले हरे कृष्ण बोलो, लेकिन वो स्मरण कितना कर पा रहा है। अगर वो पूरा जिंदगी भर अगर भौतिकवादी जीवन जी रहे तो उसका स्मरण अध्यात्म मतलब भगवान के बारे में सोचते होगा, ये इतना मुश्किल है करना ऐसा। लेकिन भगवान के भक्ति में जो लगा है, बहुत अच्छे से भक्ति में लगा है, लेकिन किसी कारणवश उसको प्राण छोड़ना पड़ रहा है, तो भगवान क्या करते हैं फोर्सफुली मतलब जबरदस्ती उसके हृदय में घुसकर क्या करते हैं, उसको स्मरण दिलाते हैं उस समय के लिए, और भगवान क्या कर, भगवान को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो ये प्राण को छोड़ना है ना, तो इसके लिए हमें उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और पूरा हमारा जो जीवन है वो क्या है, जो यही इसी के लिए है, नहीं तो फिर इस नवद्वार मतलब क्या है, इस पूरे के ही मतलब इस नव द्वार से घिरे हुए शरीर में अगर खुद के भोग के लिए सोचते रहेंगे तो फिर जो हमारा जो गंतव्य है वो अच्छा इतना हो नहीं सकता है। लेकिन अगर हमारा जो सोच है या फिर हमारा जो स्मरण है वो भगवान या उनके धाम, उनके भक्तों के द्वारा किए गए अलग अलग लीलाओं के बारे में और भक्ति में लगा होगा, तो क्या हो सकता है, वही जो उपमा दी गई है, जो अलग अलग अभी एनालॉजी दी गई, वो क्या करते हैं हमारे मुक्ति का कारण बनते हैं। और सिर्फ मुक्ति का ही नहीं, वो भगवान के प्रत्यक्ष रूप में सेवा में लगाने के लिए, जिस तरह से यमुनाचार्य की जो कथा है ना, यमुनाचार्य जी की स्टोरी में वो उनके कुछ समय के लिए भक्ति के मार्ग से दूर हो जाते तो उनको वापस लाने के लिए है ना, जो राम विश्वास जाते हैं उनको क्या करते, वापस उनको लाने के लिए बोलते, अरे बहुत बड़ा एक खजाना रखा है, वो खजाना कहाँ पे, आपके जो दादाजी वो छोड़कर गए नाथ मुनि द्वारा, और वो खजाना क्या है, सात जो जो वॉल्स, वॉल तो ठीक है, सात मतलब क्या बोलते हैं दीवारें, हाँ सात दीवारों के द्वारा वो क्या है संरक्षित है, और उसके अंदर भी क्या है खजाना है जिसकी सुरक्षा कौन कर रहा है, एक सांप कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखते हैं एक सांप यहाँ पे भी है, और यहाँ पे सुनते हैं हम भी कि हम भी एक एक नवद्वारे इस शरीर में है, लेकिन ये शरीर भी सात दीवारों से सुरक्षित है ना। रूपा जी जैसे बताते हैं कि त्वचा और खून, फिर पित्त है, फिर कफ है, और जो मसल्स है, और हड्डियां है, और क्या है वीर्य सीमन। तो ये सात जो क्या है संरक्षक दीवारें हैं इस शरीर में भी। तो यहां से लेकिन हमें कहाँ जाना है, ये जो सांप है पांच फनों वाले सांप से जाकर हमारा ध्यान कहाँ पे नियंत्रित केंद्रित होना चाहिए, जो ऐसा सांप जो क्या कर रहा है अनंत शेष, वो क्या कर रहे है इस खजाने की रक्षा कर रहे है, वो खजाना कौन है, स्वयं भगवान रंगनाथ जी, स्वयं भगवान विष्णु है ना। तो हम जब देखते हैं कि हमारा जो चेतना है ये क्या है, भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पे जाता है, और जो हमारा जो जीवन है वो भक्तिमय स्थिति में लग जाता है और भक्तिमय कार्य में लगता है, तो हमारा गंतव्य निश्चित ही क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और भगवान की कृपा से क्या कर सकते हैं, हम भगवत धाम भी प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथ रहा श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।